엄청 힘든. 3 April 1982 रूप का त्याग रूहब को धारण करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। सभी कुमार सदा रूहानियत में रहते हो, रोग में तो नहीं आते। युद्ध को रोग जल्दी आता जाता है। यह समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कर सकते हैं। जवानी का जोश रहता है, लेकिन रूहानी युद्ध अर्थात सदा रुहाब में रहने वाले सदा नम्रचित्त, क्योंकि जितना नम्रचित्त होंगे उतना निर्माण करेंगे। जहां निर्माण होंगे वहां रोग नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित्त बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। अगर जरा भी सेवा में रोग आता है तो क्या हो जाएगा? टकराव होगा, सफलता कम होगी। और क्या होगा? अगर डिसर्विस विघ्न आएंगे। अगर जरा भी सेवा में रोग आता है तो वह सेवा समाप्त हो जाती है। मुरली है 3 April 1982 की। सभी कुमार सदा रूहानियत में रहते हो, रोग में तो नहीं आते। युद्ध को रोग जल्दी आता है। यह समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं, सब कर सकते हैं। जवानी का जोश रहता है, लेकिन रूहानी युद्ध अर्थात सदा रुहाब में रहने वाले सदा नम्रचित्त, क्योंकि जितना नम्रचित्त होंगे उतना निर्माण करेंगे। जहां निर्माण होंगे वहां रोग नहीं होगा, रूहानियत होगी। तो जैसे बाप कितना नम्रचित्त बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। अगर जरा भी सेवा में रोग आता है तो वह सेवा समाप्त तो हो जाती है। तो यहां बाबा रोग के ऊपर समझा रहे हैं। रोग अर्थात रोग का संबंध किससे है? क्रोध से या मैं से? क्रोध से नहीं है, क्रोध से कम है, मैं से संबंध है। रोग अर्थात मैं से संबंधित। रोग अर्थात रोग क्या कहता है कि मैं राइट हूं। रोग कहता है मैं ही कर सकता हूं, दूसरों का कोई भरोसा नहीं, अधिक भरोसा। तो मैं ही कर सकता हूं, दूसरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये थोड़ा डाउटफुल है, संदिग्ध है। और मैं बड़ा हूं, मुझे ये ज्यादा आता है, मेरी समझ ज्यादा है, मेरी नॉलेज ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है, पावर ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है, चातुर्य ज्यादा है, मेरी आइडिया, मेरी इन्वेंशन, मेरा विचार, मेरा मत, मेरी मत, ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास स्वयं में। तो रोग में तो नहीं आते। युद्ध को रोग जल्दी आ जाता है, जवान होते हैं उनको रोग जल्दी आ जाता है। यह समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कर सकते हैं। जवानी का जोश रहता है, न्यू ब्लड, जवानी का जोश रहता है। और जो बूढ़े लोग हैं उनको क्या समझते हैं? जवान रूढ़िवादी और आउटडेटेड है। इनके विचार सारे के सारे आउटडेटेड है, काल बाह्य। मार्क ट्वेन जो है ना पाश्चात्य जगत का लेखक, उसने लिखा है जब मैं 20 साल का था तब समझता था मेरे पिताजी एकदम ही बुद्धू है, बिल्कुल उनको कुछ भी समझ नहीं है, कोई भी चीज उनको समझ में नहीं आती, हर चीज समझानी पड़ती है। फिर जब मैं 20 साल का हुआ तो मुझे लगा इन 20 साल में मेरे पिताजी ने कितनी उन्नति कर ली, कितने बुद्धिमान हो गए। वो बुद्धिमान उसके पिताजी नहीं वो हुआ है, उसके पिताजी तभी भी बुद्धिमान थे 20 साल पहले। तो जो यंग है, जो जवान है, जो यूथ है, वो समझते हैं हमको हर चीज ज्यादा समझ में आती है, हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। लेकिन ये तो जिस्मानी युद्ध है, संसार की युद्ध। यहाँ हम सब कौन है? रूहानी युद्ध। हम युद्ध भी है तो बुरे भी है, मान दोस्ती भी है, दोनों है। क्या समझना चाहिए अपने आप को? ज्यादा युद्ध समझना चाहिए या बुरा समझना चाहिए? वानप्रस्थी भी बोला है आपने, अपने आप को वानप्रस्थी समझो। कर्म में युद्ध, सेवा में युद्ध, उमंग उत्साह, जोश खरोश सब कुछ रहना चाहिए उसमें। परंतु इस संसार के प्रति, संसार के जो भी आकर्षण है उनके प्रति हम अभी वानप्रस्थी है। यहाँ का कुछ नहीं चाहिए, प्रौड समझना है उसमें स्वयं को कि अभी जाने का समय आ गया है। लेकिन रूहानी युद्ध अर्थात सदा रुहाब में रहने वाले, एक है रोब, एक है रुहाब, एक है दबदबा। वो कहाँ है? दबदबा होता है ना रोब में आता है। वैसे तो रुहाब शब्द भी हिंदी भाषा कहती है रुहाब अर्थात रोब। रुहाब का अर्थ भाषा में होता है रोब ही होता है, परंतु बाबा रुहाब को समान से जोड़ते हैं, रूह से जोड़ते हैं या समान से जोड़ते हैं। तो रूहानी युद्ध अर्थात सदा रुहाब में रहने वाले, सदा नम्रचित्त, अध्यात्म में काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, मोह को जीत लिया, क्या बचता है फिर अंत में? मैं। और ये इतना सूक्ष्म है कि क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह ये तो खत्म हो गया, परंतु ये जो मैं है, अब जो जो सेवाएं की जाती है उन सेवाओं में मैं बनाता है। अब जो जो सिद्धियां प्राप्त होती है, जो भी अध्यात्म मार्ग में निकलेगा उसको सिद्धियां एक दिन स्वतः ही प्राप्त होगी। जो किसी भी तरह की कोई भी साधना करता है उसको स्वतः ही सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। जैसे कि कौन सी सिद्धियां, क्या होने वाला है उसकी थोड़ी आइडिया आ जाती है, टचिंग होने लगती है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो पता लगने लगता है। बुद्धि इतनी स्पष्ट है कि बहुत सारी चीजें पकड़ में आने लगती है। ये सारी सिद्धियां अध्यात्म के मार्ग में स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। डेंजर जो है वो है इन सिद्धियों का अहंकार, बुद्धि में नए नए प्लानिंग्स आ जाना, सेवा की नई नई टचिंग्स हो जाना, ये सब अच्छे अच्छे प्लान्स आना, जितना बुद्धि क्लियर और स्पष्ट, क्योंकि काम को जीत लिया है, काम से ऊपर उठ गए, लोभ से ऊपर उठ गए, आसक्ति से ऊपर उठ गए, सेल्फ कंट्रोल आ गया है। तो ये सारी जो बातें, इनके वजह से तुरंत नई नई बातें आने लगती है, स्वप्न एकदम शुद्ध और पवित्र होने लगते हैं। बहुत सारी सिक्स्थ सेंस जिसको कहा जाता है इंग्लिश में ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP की पावर आ जाती है। किताबें लिखी गई है ESP पर, वहां क्या होने वाला है वो यहाँ पता चलता है, उधर की आवाजें इधर सुनाई देने लगती है। ये सारी पावर्स है, साइकिक पावर्स, ऑकल्ट पावर, सिद्धियां जिसे कहते हैं सिद्धि। तो व्यक्तियों में ये सिद्धियां आने लगती है अध्यात्म के मार्ग में चलते चलते। जैसे ही ये स्थिति आती है वहां अहंकार जन्म लेता है, फिर और अहंकार जहां जन्म लेता है फिर वहां पतन चालू होता है। इसके लिए इस मार्ग में ये जो रोप दिखाना, मैं बड़ा हूं बाकियों से मैं आगे हूं, ये भाव ही गिराता है। जैसे एक सिद्ध व्यक्ति था, उसमें इतनी सारी सिद्धियां उसे प्राप्त हो गई थी कि वो जो कुछ कहता था वो सत्य होता था। एक दिन उसे जहाज से समुंदर पार करना था, तो समुंदर के किनारे आता है और तूफान चलने लगता है जोर से। उसे क्रोध आता है कि मैं जिस जहाज में जा रहा हूं वहां तूफान, अभी बैठने ही वाला हूं। तो आदेश देता है हवा को कि रुक जा, हवा को आदेश देता है रुकने के लिए। मेरे होते हुए आंधी तूफान, तो हवा रुक जाती है कुछ समय के लिए। दूर से वहां से एक दूसरा जहाज आते रहता है, क्योंकि हवा रुक जाती है तो वो जो है उसको क्या कहते हैं हिंदी में, और जिसको कहते हैं इंग्लिश में ओयर, वो जो जहाज में ऐसा पर्दे जैसा होता है ना, पाल, पाल, हाँ पाल, वो जो पाल होता है, क्योंकि हवा रुक जाती है तो वो भी रुक जाता है। और उस जहाज में बहुत सारे यात्री होते हैं तो वो जहाज पूरा के पूरा डूब जाता है। अभी ये जो इतने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, उसके पापों का बोझ इसको लगता है और इसकी सारी सिद्धियां समाप्त हो जाती है। सिद्धियों का गलत प्रयोग किया है, क्यों? क्योंकि अहंकार ने जन्म लिया है कि मेरे होते हुए ये आंधी तूफान जिस जहां मैं बैठने वाला हूं, तो अहंकार जो है ये अंतिम शत्रु है। इसके लिए बाबा ने जो तीन महावाक्य उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। निरंकारी को अलग श्रेणी में रखा गया है, जबकि निर्विकारी में पांच विकार आ जाते हैं। निराकारी तो ठीक है, अशरीरी आत्मिक स्वरूप। दूसरा निर्विकारी, निर्विकारी में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार आ गए, उसके बावजूद भी। तीसरा क्या है? निरहंकारी। निरहंकारी को फिर से अलग से एक स्टेटस दिया गया। निरहंकारी अर्थात कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं पाया है, जो है प्रभु देन है, ईश्वरीय कृपा है, दया है, आशीर्वाद है, हमारा मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऊपर से आ रहा है। अगर ये बात आ गई कि ये मैं कर रहा हूं, ये मेरी बुद्धि के कारण ये सेवा हो रही है, ये अहंकार ही गिराता है नीचे। और ये इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि कईयों को हम अपनी आंखों के सामने आज भी गिरते हुए देख रहे हैं। जैसे जैसे इस मार्ग में आगे बढ़ो, सब कुछ चरणों में आकर गिरेगा, नाम, मान, अहंकार, सब कुछ। स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है कि जितना नाम और जितनी प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त हुई है उस समय, अगर किसी और व्यक्ति को होती तो शायद वो पागल हो चुका होता, परंतु मुझे पता है कि जो मुझे प्राप्त हो गया है, हो रहा है, वो मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ मैं बोल रहा हूं, मैं मास्टर स्पीकिंग थ्रू मी, मेरे जो गुरु है वो ही मेरे द्वारा बोल रहे हैं। इसमें मेरी प्रतिभा, मेरी बुद्धि कुछ भी कहीं पर भी नहीं है। इसके लिए फेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द एनिमीज इन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में फेम, नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान, इसकी ये हो जाना या फिर उसकी कामना करना, फिर बाद में धीरे धीरे, ये तो उससे भी बड़ा है। इसके लिए बहुत ही सूक्ष्म शत्रु है, वो है नाम की कामना। वो मैं को तृप्त करता है, नाम हो जाना ये मैं को तृप्त करता है। और मैं ऐसा पात्र है वो कि कभी भी भरता नहीं, कितना भी उसमें डालो और तृप्त ही रहता है वो। बाबा कह रहे हैं रूहानी युद्ध अर्थात रूहाब में रहने वाले, रूहाब का संबंध रूह से है, रोग का संबंध देह से है, देह वाला जो मैं है उससे है, सदा नम्र चित्त जो पाया है क्या है वो सब उपहार है, वो चाहे तो किसी और को भी दे सकता था। क्या हमसे अधिक योग्य संसार में लोग नहीं
है?
बहुत सारे हैं, फिर भी इस कार्य के लिए उसने हमें चुना, ये उसकी असीम अनुकंपा है। क्योंकि जितना नम्रचित्त होंगे उतना निर्माण करेंगे, निर्माण बढ़ाना, कंस्ट्रक्शन करेंगे, जहां निर्माण होंगे छोटा ना, निर्माण छोटा ना, मान रहित, मान की कामना रहित, जहां निर्माण होंगे वहां रोग नहीं होगा। निर्माण अर्थात नम्रचित, निर्माण अर्थात हम्बल, वहां पर रोग नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित्त बनकर आते हैं, जैसे बाबा नम्रचित्त बनकर आते हैं, सब कुछ उसे पता है, ऐसा शायद ही कुछ है कि जो उसे पता नहीं है, फिर भी अव्यक्तवाणी सुनते हैं तो कैसे लगता है उसको कि जैसे कि उसे कुछ पता नहीं है, जैसे अभी भी मिल रहा है। अभी तक उसने एक एक अव्यक्त वाणियों में कितनी गहरी गहरी फिलोसफी खोल कर रखती है, 70s और 80s की मूल्यों में संसार का सबसे बड़ा मनोविज्ञान छिपा हुआ है, फिर भी अभी ऐसे बात करता है जैसे पहले बार ही बता रहा है वो बातें, एकदम जैसे मासूमियत के साथ, रोब नहीं करता है, उसको क्या क्या कहते हैं फिर भी वो रोब नहीं दिखाता है, वो चाहे तो कह भी सकता है, वो चाहे तो कह सकता है कि जिन्होंने होमवर्क किया है बस वही हॉल में रहे, बाकी आउट। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, क्यों आपको विश्वास नहीं है कि कोई नहीं है सभा में जिन्होंने होमवर्क किया है? तो उसे संख्या की थोड़ी आवश्यकता है, क्वालिटी चाहिए उसे, क्वांटिटी की क्या है, वो क्या खुश होता है ज्यादा है तो वैसे होता है। तो जैसे बाप कितना नम्रचित्त होकर आते हैं, परकाया प्रवेश करता है, संडे की मूल्य में तुम ट्रेन से आते हो, मैं परकाया में आता हूं, यही मेरी ट्रेन है, तुम उस ट्रेन में आते हो, मैं इस ट्रेन में आता हूं, ऐसे फॉलो फादर। अगर जरा भी सेवा में रोब आता है तो वह सेवा समाप्त हो जाती है, जिस सेवा में अहंकार दिख रहा है, जो सेवा में व्यक्ति का नाम हो रहा है, व्यक्ति के नाम की कामना है, सेवा की काम नाम की कामना कम, संस्था के नाम के पीछे स्वयं का नाम की कामना ज्यादा है, ऊपर से संस्था का नाम और नीचे से मैं, इसकी आड़ में अपनी महिमा, कितना सूक्ष्म है। तो क्या सुना, सदा सभी कुमार सदा रूहानियत में रहते हैं, रोग में तो नहीं आते, युद्ध को जल्दी रोग आ जाता है, यह समझते हम सब कुछ जानते हैं, सब कर सकते हैं, जवानी का जोश रहता है, लेकिन रूहानी युद्ध अर्थात सदा रूहब में रहने वाले सदा नम्रचित, क्योंकि जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण करेंगे, तो निर्माण करने का आधार है निर्माण, जहां निर्माण होंगे वहां रोग नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। और अगर हम में रोग आ रहा है परंतु हम दिखा रहे हैं कि नहीं है, हम में मैं बहुत ज्यादा है परंतु हम ऊपर से दबा रहे हैं, तो क्या बाप को ये पता नहीं है? हवा को ठग सकते हैं क्या? यज्ञ के लोगों को शायद ठग भी ले, परंतु जिसका यज्ञ है क्या उसको ठग सकते हैं? महाभारत के युद्ध में बताया है कि रोज सुबह वहां का जो बावर्ची होता था खाना बनाने वाला, वो बराबर उतनी ही संख्या का भोजन बनाता था, जैसे उदाहरण के लिए 10,506 लोगों का भोजन, उदाहरण उससे ज्यादा संख्या होगी, उतनी ही लोगों का बराबर भोजन बनाता था सारे दिन भर का। अभी युद्ध होने वाला है, लोग घायल होने वाले, कितने ही मरने वाले हैं, परंतु भोजन वो जैसे यहां संख्या लिखते हैं ना पांडव भवन में, तो वो तो पता है इतने हैं मधुबन निवासी, इतने सेवादार, इतने ये, इतने ये, इतने ये, इतने, तो उसके पास वो सुबह सुबह फिगर आ जाती थी कि आज इतने लोगों का भोजन बनाना है, और वो बराबर उतने ही लोगों का भोजन बनाता था, एक भी कम नहीं। अभी सारे दिन भर कितने मारे गए इधर और उधर दोनों का मिला के। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य होता है, ये कैसे संभव हो जाता है, इसको कहां से पता चल जाता है कि इतने ही लोगों का आज भोजन बनाना है, क्योंकि युद्ध तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है आज के दिन का। तो वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चलता है? वो कहता है सुबह सुबह मैं श्री कृष्ण के पास चला जाता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि आज की जो फिगर है, संख्या है, जिन लोगों का भोजन बनाना है वो इतना है, इसका अर्थ उसे सब कुछ पहले ही पता है इतने आज जाने वाले हैं, उसे कुछ भी छिपा नहीं है। हमको बड़ा लग रहा है कि देखो अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, बेचारा कर्ण नीचे था, जमीन पर था, नहीं मारना चाहिए था, फिर भी मार दिया, उसे सब पता है। बेचारा वो द्रोणाचार्य बेचारा बैठा था और फिर उसको निहत्था मार दिया, परंतु उसे वो सब कुछ ही पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको पता नहीं है। परंतु देखो उसकी स्थिति कैसी है, कराई हो रहा था परंतु ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ खास पता नहीं है, कुछ जैसे वो सलाह दे रहा है, कभी सोच रहा है अच्छा ये हो रहा है तो ये करना चाहिए। इस यज्ञ में वो तो ठीक है परंतु वो युद्ध था, उसमें रोज मर रहे थे लोग, और कौन मर रहा है, कितने मर रहा है, उसे सब कुछ पता था। वो तो रूपक है, ये यज्ञ स्वयं भगवान ने स्थापन किया है। इस संपूर्ण यज्ञ में, इस यज्ञ का जो यज्ञ रक्षक, यज्ञ नियंता, यज्ञ रचयिता है, क्या उसे ये पता नहीं है? इस यज्ञ में हमें किसने लाया? अगर उसने हमें इस यज्ञ में लाया तो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, और हम जिस केंद्र में है, जिस स्थान पर है, जिस महकमे विभाग में है, क्या वहां क्या है उसे पता नहीं? हर एक चीज का उसे पता है, ये उसका यज्ञ है। कई कहते हैं यज्ञ भी सतो रजो तमो से गुजर रहा है, क्या ये सत्य है? सूरज भाई जी से किसी ने पूछा था, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये चढ़ती कला का युग है, तो इस चढ़ती कला के युग में ये जो विभाजन है, पहले सतो 1G 2G 3G अभी 4G फोर्थ जनरेशन यज्ञ की चल रही है, ऐसा यहां नहीं हो सकता है क्योंकि ये चढ़ती कला का युग है पूरा ही। सभी को शूद्र से ब्राह्मण से देवता से फरिश्ता से देवता बनना है। इसके लिए ये कभी मत सोचना कि हम उसे ठग सकते हैं, उसे कुछ पता नहीं है, उसे सब कुछ पता है। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, साकार महावाक्य है, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। भले वो कहे मैं जानी जाननहार नहीं हूं, मुझे ये पता नहीं, मुझे वो पता नहीं, परंतु उसे सब कुछ पता है। अगर जो बता दूं तो और ही अशांति हो जाएगी, अगर क्या होने वाला है ये बता दूं तो, वो शिशुपाल का दिखाया है ना, उसकी उस शिशुपाल का जब जन्म होता है तो मस्तक पर एक मणि होता है, तो उसकी माँ उसको पूछ बैठती है इसकी मृत्यु कैसे होगी। अभी ऐसा ऐसी माँ ने कभी ऐसा पूछना चाहिए? वो जिद करती है कि मुझे बताओ इसकी मृत्यु कैसे होगी। अगर न पता होता तो कितना अच्छा होता, जीवन सुखों से बीतता, पर वो प्रश्न ही ऐसा पूछती है कि मुझे बताओ इसकी मृत्यु कैसे होगी। तो वो कहता है मेरे यहां तो होगी। तो फिर वो कहते हैं कि अभी इसको माफ कर दो। तो फिर वो कहते हैं कि 100 अपराध में माफ करूंगा, परंतु 100 के ऊपर मैं माफ नहीं करूंगा। तो फिर वहां दिखाया ना क्या क्या उसको कहता है, ग्वाला, माखन चोर, बहुत कुछ कहता है उसको। और 100 होने के बाद में आउट। बाबा कभी ऐसा करता है? कितने अपराध हो गए ब्राह्मण बनने के बाद। अगर बाबा भी ये शर्त रखता, अगर ब्राह्मण बनने के बाद अगर 100 अपराध तक मैं देखूंगा, 100 अपराध के बाद नागेश भाई स्वदर्शन, उधर तो सुदर्शन चक्र कहते हैं, सुदर्शन चक्र घुमा के आउट, यहां तो उससे भी ज्यादा हो गए। ब्राह्मण बनने के बाद पाप, पाप किसको कहा है बाबा ने, अगर किसी को आत्मा के बदले देह देखते हो तो वह भी विकर्म है। अभी गिनो सारे दिन भर के पाप। क्षमा के सागर, जैसे वो क्रिश्चियन में ओशन ऑफ मर्सी कहते हैं ना, तो कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे से बड़ा अपराधी संसार में कौन है, मेरे से बड़ा अपराधी संसार में कौन है, जितने पाप मैंने किए शायद ही किसी ने किए होंगे, पर तुझसे बड़ा दयालु भी कौन है। अगर मेरे से ज्यादा पाप किसी के नहीं है तो तेरे से बड़ा दयालु, कृपा सिंधु, कोमल चित अतिदीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, बिनु कारण कृपा करने वाला है, अहेतु की उसकी अनुकंपा है, उसमें कोई हेतु नहीं है। बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, राम का वर्णन है बिनु कारण से कृपा करता है, कोमल चित है उसका, अति दीन दयाला, कृपा सिंधु करुणा सिंधु उसकी महिमा है, अल रहमान अल रहीम। पर उसका फायदा नहीं उठाना। धन क्या है, बीच बीच में थोड़ा देता है, अभी देना बंद कर दिया है सर, अभी कितनी मूल्यों से तो आया ही नहीं है कुछ, जो दे दिया है वो तो पहले दे दिया,
एक बार देगा अभी लास्ट,
अभी बड़ी वाली देगा एक। तो स्वयं को नम्र चित्त रखना, स्वयं को निर्माण चित्त रखना, स्वयं को रोप से मुक्त रखना, स्वयं को इस मैपन के भाव से मुक्त रखना। हम कठपुतली है, डोर उसके हाथ में है, अगर उसे हमसे बहुत सारी सेवाएं करानी है तो वो कराएगा। हमें उतावला होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये करूं मैं वो करूं। अगर हम में सामर्थ्य है, क्षमता है, टैलेंट है, बुद्धि है, विशेषता है, उसे सेवा में कैसे लगाया जाए ये उसके ऊपर छोड़ दो। हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि ये कार्य तो मुझे अच्छे से आता है, ये सेवा मुझे दी जाए। समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी ने कुछ भी यहां पाया नहीं, इस बात को बार बार स्मरण करना और मैंपन से स्वयं को मुक्त रखना। तो ये थी मुरली 3 अप्रैल 1982 की। कमेंट्री का बहुत दिनों से सुशील भाई
शुरू कर देंगे,
कब से, कल से, कल अव्यक्त वाणी पढ़नी है 70 की, कौन पढ़ेगा? 18 जून कितनी पड़ी है?
तो
ढाई पेज की। बहन जी हैं आप कल, है ना, मुरली की डेट ले लो, कल 70 की, फ्राइडे सैटरडे 70 की मुरली होती है, पढ़ना अर्थात
और लिखना,
हाँ तो डेट आप ले लीजिए, कल सुनाएंगे, ठीक है, कल है ना, उसके बाद सैटरडे, उसके आगे वाली मुरली दूसरी बहन जी है, कभी जा रहे हैं? आज ही जा रहे हैं, तो 2 मिनट सुना के जाइए, फिर कुछ नहीं, आइए आ जाइए आ जाइए, नहीं ओम शांति.
आपको बताते हैं कैसे सुनाना होता है. इधर आओ.
अपना परिचय दे.
हाँ देखो धीरे धीरे आओ.
अच्छा इसको रिकॉर्ड नहीं कहाँ भेजना. नहीं ये थोड़ा ज्यादा लगता है.
इतना मान